नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रवि कपूर। मुख्य समाचार। पाकिस्तान के अवैध व कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापारिक आवाजाही जल्द बहाल हो। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने जॉर्डन में अमरीकी हवाई अड्डे और सेंट्रल कमांड मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा किया। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई। और राष्ट्रमंडल खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मानवाधिकार संगठन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। ये आह्वान पाकिस्तानी सेना की अधिकृत क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर गोलीबारी की खबरों के बाद किया गया है। इस गोलीबारी में 40 से अधिक नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। ये हत्याएं 27 जुलाई को रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के शांतिपूर्ण मार्च के फिर से शुरू होने के बाद हुई। एक रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। इस बीच पाकिस्तानी अधिकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 निजी स्कूलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। इन स्कूलों के प्रबंधन, कर्मचारियों और छात्रों ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था। ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों पुराने नियंत्रण को सीधी चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की बार बार दमनात्मक कार्रवाई में कई नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू लागू है तथा संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मनोज।
ब्रिटिश कश्मीरों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में नागरिकों की कथित हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा में पाकिस्तान की संलिप्तता का आरोप लगाया और POJK की स्वतंत्रता की मांग की। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। श्री हरीश ने इस महीने हॉर्मुज से गुजरने के दौरान GFS गैलेक्सी, MT अल बहिया और MT मोम्बासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर नौवहन और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC ने आज दावा किया कि उसके एरोस्पेस फोर्स ने जॉर्डन स्थित एक अमरीकी हवाई अड्डे और अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम मुख्यालय को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। एक रिपोर्ट।
इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी IRNA के अनुसार ये हमले ईरान पर अमरीकी सैन्य हमलों के जवाब में किए गए थे। IRGC ने अमरीकी धमकियों, अवैध और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के समाप्त होने तक अभियान जारी रखने का संकल्प लिया है। ये दावा ईरान और अमरीका के बीच सैन्य झड़पों के बाद पश्चिम एशिया में नए सिरे से बढ़े तनाव के बीच आया है। इस बीच अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान से दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका, जिसे उसने क्षेत्र में अमरीकी बलों पर अचानक हमले का प्रयास बताया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के IRGC ने पश्चिम एशिया में अमरीकी बलों पर अचानक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। IRGC ने कहा कि सभी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए 7.1 तीव्रता के भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। राहत और बचाव दल बचाव कार्य में जुटे हैं। इस भूकंप में कम से कम 62 लोग घायल हुए हैं, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। एक रिपोर्ट।
कल क्यूशू द्वीप के कुमामोतो प्रांत में आए इस भूकंप से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। काशिमा शहर के एओन मॉल में गैस विस्फोट के बाद दूसरी मंजिल का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। भूकंप के बाद लगभग 34,900 घरों में बिजली और करीब 15,000 घरों में पानी की आपूर्ति बाधित है। 8,800 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्रशासन आवश्यक सेवाओं को बहाल करने में जुटा हुआ है। वहीं बुलेट ट्रेन सेवाएं अभी भी निलंबित हैं और कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हालांकि कुमामोतो हवाई अड्डे पर परिचालन फिर से शुरू हो गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने भूकंप से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और जल्द ठीक होने की भी प्रार्थना की। हॉकी इंडिया ने आज 20वें एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जापान के आइची नागोया में खेली जाएगी। सुनते हैं विशाल की ये रिपोर्ट।
भारतीय टीम में अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और उभरती प्रतिभाओं का मिश्रण है। भारतीय टीम की नज़र 2023 के हांगझोउ एशियाई खेलों में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में जीते गए स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव करने पर होगी। भारत के सबसे अनुभवी हॉकी खिलाड़ी और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को टीम में अनुभव और संतुलन देने के लिए शामिल किया गया है। गोलकीपिंग की जिम्मेदारी मोहित एचएस और सूरज करकेरा संभालेंगे। डिफेंस यूनिट में जर्मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय सुमित और यशदीप सिवाच को टीम में जगह दी गई है। भारत की मिडफील्ड में राजेंद्र सिंह, राजकुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा और विवेक सागर प्रसाद होंगे, जबकि फॉरवर्ड लाइन में दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह और अभिषेक शामिल हैं। भारत को पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ रखा गया है।
6-6 टीमों के 2 पूल में बटी 12 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। सभी मैच काका मेघहारा के गिफू प्री फ्रैक्चुअल ग्रीन स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ करेगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुधंती, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। नरेंद्र ने 90 किलोग्राम, अंकुश ने 80 किलोग्राम और सचिन ने 70 किलोग्राम भारवर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक पक्का किया, जबकि महिला वर्ग में अरुधंती चौधरी ने 70 किलोग्राम और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भारवर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और बाघों की घटती संख्या की रोकथाम के लिए आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना नवंबर 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापारिक आवाजाही जल्द बहाल हो। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने जॉर्डन में अमरीकी हवाई अड्डे और सेंट्रल कमांड मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा किया। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 18 हुई और राष्ट्रमंडल खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्के किए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।